ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 28 फरवरी 2021 के लिए है। विषय: मसीह यीशु, स्वर्णपथ, यूहन्ना। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढारस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मसीह यीशु। उत्तरदायी ध्यान: यूहन्ना। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वास्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आँखों की अभिलाषा और जीव का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बने रहेगा। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है, हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वो जिसका ये विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सत्य को पहचानें, और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। पाठ उपदेश बाइबल में से यूहन्ना। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। उसमें जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। मत्ती। यूहन्ना ने बंदीगृह में मसीह के कामों का सुसमाचार सुनकर अपने चेलों को उससे ये पूछवाने भेजा कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बात जो है। यीशु ने उत्तर दिया कि जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो, कि अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं और बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं और कंगालों को सुसमाचार सुनाया जाता है, और धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर खाए। मत्ती। उसी दिन यीशु घर से निकलकर झील के किनारे जा बैठा, और उसके पास ऐसी बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई कि वो नावों पर चढ़ गया, और सारी भीड़ किनारे पर खड़ी रही, और उसने उनसे दृष्टांतों में बहुत सी बातें कहीं कि देखो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते वक्त कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो जल्द उग आए, पर सूरज निकलने पर वो जल गए और जड़ ना पकड़ने से सूख गए। कुछ झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने भड़कर उन्हें दबा लिया, पर कुछ अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। और चेलों ने पास आकर उससे कहा, तू उनसे दृष्टांतों में क्यों बातें करता है? मैं उनसे दृष्टांतों में इसलिए बातें करता हूँ कि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है, और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें, कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें ठीक करूँ। जो पथरीली भूमि पर बोया गया ये वो है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है। जो झाड़ियों में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनता है, पर इस संसार की चिंता और धन का धोखा वचन को दबाता है और वो फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोया गया ये वो है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना, कोई 30 गुना। मत्ती। यीशु कैसरिया फिलिप्पी के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलिया और कितने यर्मिया या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पत्रस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन यूना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और पूर्णियों और महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे तुझ पर ऐसा कभी ना होगा। उसने फिर कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों का नहीं पर मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपनी स्लीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, और जो मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। योहन्ना। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वो आत्मा है और जीवन भी हैं, परंतु तुम में से कितने ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करते। इस पर उसके चेलों में से बथेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके पीछे न चले। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। कुलसियों। सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। चौकस रहो कि कोई तुम्हें इस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहिर न कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार हैं पर मसीह के अनुसार नहीं। तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है, और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर है और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसको स्लीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका कुलम खुला तमाशा बनाया और स्लीप के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा के ओर से मर गए हो। तो फिर उनके समान जो संसार में जीवन बिताते हैं मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षा के अनुसार हो, और ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि ये न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, क्योंकि ये सब वास्तुएं काम में लाते लाते नाश हो जाएंगी। कुलसियों। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वास्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु मसीह की सेवा करते रहो। अब मैं मेरी बेकरी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। नासरत के यीशु के आगमन ने मसीही युग की पहली शताब्दी को चिन्हित किया, लेकिन मसीह वर्षों या दिनों की शुरुआत के बिना है। मसीह युग के पहले और बाद में सभी पीढ़ियों के दौरान आध्यात्मिक विचार के रूप में मसीह भगवान का प्रतिबिंब शक्ति और अनुग्रह के कुछ उपाय के साथ आया है, जो सभी मसीह सत्य को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। मसीह भगवान की दिव्य अभिव्यक्ति जो अवतार त्रुटि को नष्ट करने के लिए मांस के लिए आती है। यीशु ईश्वर विचार की उच्चतम मानव भावतिक अवधारणा विरोध करने और त्रुटि को नष्ट करने और प्रकाश की अमृता लाने के लिए। अतीत की तरह मसीह की भावना जो पुरुषों के समारोहों और सिद्धांतों को दूर करती है तब तक स्वीकार नहीं की जाती जब तक के पुरुषों के दिल इसके लिए तैयार नहीं हो जाते। यीशु के मिशन ने भविष्यवाणी की पुष्टि की और पुराने समय के तथाकथित चमत्कारों को ईश्वरीय शक्ति के प्राकृतिक प्रदर्शनों के रूप में समझाया जिन्हें समझा नहीं गया था। उन्होंने अपना समर्पण किसी को भी दिया जिनको इस तरह के प्रभावों से इनकार नहीं करना चाहिए, जो कि दिव्य मन से आ रहा है, भगवान की एकता को साबित करता है, दिव्य सिद्धांत जो सभी सिद्धभाव को बाहर लाता है। संसार का वास्तविक क्षेत्र अधिकार मन में है, प्रतीक प्रभाव को नियंत्रित करता है और सभी कार्य को दिव्य मन में निहित माना जाता है। यीशु ने धीरज धरने की सच्चाई सिखाने और उसका प्रदर्शन करने में धीरज से काम लिया। उनके छात्रों ने देखा कि सत्य की ये शक्ति बीमारों को ठीक करती है, बुराई को निकालती है, मुर्दों को उठाती है, लेकिन इस अद्भुत कार्य का परम आध्यात्मिक रूप से विवेकाधीन नहीं था। यहाँ तक कि उनके द्वारा स्लीप पर चढ़ाए जाने के बाद तक, जब उनका बेदाग शिक्षक उनके सामने खड़ा था, बीमारी पाप मृत्यु और कब्र पर विजेता। समझने की इच्छा से मास्टर ने दोहराया, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? इस नए प्रश्न का मतलब था वो कौन है या क्या है जो काम करने में सक्षम है, इसलिए लोकप्रिय दिमाग के लिए रहस्य में है। अपनी सामान्य अभिरुचि के साथ शमौन ने अपने भाइयों के लिए उत्तर दिया और उसके उत्तर ने एक महान तथ्य को सामने रखा कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, मतलब मसीहा वही है जिसे आपने घोषित किया है। मसीह ईश्वर की आत्मा सत्य जीवन और प्रेम की जो मानसिक रूप से ठीक करता है। मास्टर ने अक्सर अपने शब्दों को समझने से इनकार कर दिया क्योंकि आध्यात्मिक सत्य को समझने के लिए भौतिक युग में ये मुश्किल था। पाप और स्वयं के विश्वास में दबे हुए लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो केवल आनंद या इंद्रियों के संतुष्ट के लिए जी रहे हैं, पदार्थ में उसने कहा, आंखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते। कहीं ऐसा ना हो कि आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें ठीक करूं। उसने सिखाया कि भावतिक इंद्रियां सत्य और उसकी उपचार शक्ति को बंद कर देती हैं। यीशु के दृष्टांत जीवन पाप और मृत्यु के साथ कभी भी मेल नहीं खाते, ये इस रूप में समझे जाते हैं। उन्होंने भावतिक ज्ञान के मूल में विज्ञान की कुल्हाड़ी को रखा कि वो पंथीवाद के झूठे सिद्धांत को काटने के लिए तैयार हो सकता है कि ईश्वर या जीवन सामग्री में है। यीशु ने एक समय में 70 छात्रों को भेजा, लेकिन केवल 12 ने एक वंचानी ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। परंपरा उसे 200 या 300 अन्य शिष्यों के साथ श्रेय देती है जिन्होंने कोई नाम नहीं छोड़ा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। वह अनुग्रह से दूर हो गए क्योंकि वो कभी भी अपने गुरु के निर्देश को नहीं समझे थे। जो लोग मसीह का पालन करना स्वीकार करते हैं वो उस आवश्यक धर्म को अस्वीकार क्यों करते हैं जो वो स्थापित करने के लिए आया था? यीशु के अत्याचारियों ने इसी बिंदु पर अपना सबसे मजबूत हमला किया। उन्होंने उसे सामग्री की दया पर रखने और कुछ निश्चित भावतिक कवानीन के अनुसार उसे मारने का प्रयास किया। मसीह धर्म सिद्धांत और प्रमाण आध्यात्मिक अर्थों से समझा जाता है। उन्हें यीशु के प्रदर्शनों में दिखाया गया है जो सामग्री और उसके तथाकथित कानूनों की अवहेलना करते हैं, बुराइयों को मिटाकर और मृत्यु को नष्ट करके, अर्थात अंतम शत्रु जो नष्ट हो जाएगा। यदि बीमारी वास्तविक है तो यह अमृतता से संबंधित है। अगर यह सच है तो यह सत्य का एक हिस्सा है। क्या आप सत्य की गुणवत्ता या स्थिति को नष्ट करने के लिए दावों के साथ या बिना प्रयास करेंगे? लेकिन अगर बीमारी और पाप भ्रम है तो इस नश्वर सपने से जागृति या भ्रम हमें स्वस्थ, पवित्रता और अमरता में लाएंगे। ये जागृति हमेशा के लिए मसीह के आने की है। सत्य का उन्नत रूप है जो त्रुटि को बाहर निकालता है और बीमारियों को ठीक करता है। ये वो मोक्ष है जो ईश्वर, ईश्वरीय सिद्धांत और प्रेम के माध्यम से आता है, जैसा कि यीशु द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जब मसीह पाप या बीमारी की धारणा को एक बेहतर विश्वास में बदलता है तो विश्वास आध्यात्मिक समझ में बदल जाता है और पाप, बीमारी और मृत्यु गायब हो जाती है। हमारे मालिक ने शैतानों, बुराइयों को बाहर निकाल दिया और बीमारों को ठीक किया। उनके अनुयायियों के बारे में ये भी कहा जाना चाहिए कि वो भय और सभी बुराइयों को अपने और दूसरों से दूर करते हैं और बीमारों को ठीक करते हैं। जब भी मनुष्य ईश्वर द्वारा शासित होगा, ईश्वर मनुष्य द्वारा बीमारों को ठीक करेगा। सत्य ने त्रुटि को अब बाहर कर दिया, जैसा कि 19 सदियों पहले हुआ था। आध्यात्मिक विचार का प्रतिरूपण हमारे मास्टर के सांसारिक जीवन में एक संक्षिप्त इतिहास था, परंतु उसके राज्य का अंत ना होगा, क्योंकि मसीह ईश्वर का विचार अंत तक सभी देशों और लोगों पर शासन करेगा, अनिवार्य रूप से बिल्कुल अंत में दिव्य विज्ञान के साथ। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझमें शापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझावों से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।